ये कहा जाता है कि ज़कात जो है वो अपने करीबी बहन भाइयों को नहीं दी जा सकती। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज मैंने ज़कात एक निकाली है और अचानक मेरे भाई को जो है वो ज़रूरत पड़ गई है और मेरे पास और पीछे पैसे नहीं है, मैंने किसी चीज़ को सेल करके ज़कात निकाली है जैसा कि हुक्म है, तो अब क्या मैं उस ज़कात की रकम से अपने भाई की मदद कर सकता हूँ या इसके लिए कोई और फिर
बहन भाई को नहीं दी जा सकती जावेद साहब? ज़कात
किसने बताया है कि बहन भाई को नहीं दी जा सकती?
आमतौर पर ख्याल
से बड़े मुस्तक वही है। देखिए कुरान मजीद तो कहता है वमा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक्रबीन, यानी आपके इन्फाक के पहले मुस्तक आपके वालिदैन हैं, बहन भाई तो बाद में आएंगे। यानी सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके पास ज़कात का पैसा है, सदकात का पैसा है, आप कोई इन्फाक करना चाहते हैं, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके वालिदैन को कोई ज़रूरत तो नहीं है, आपके बहन भाइयों को कोई ज़रूरत तो नहीं है, आपके करीबी अज़्ज़ा को कोई ज़रूरत तो नहीं है, आपके यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन वो तो ज़रूरतमंद नहीं है, आपके किसी हमसाये को तो ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हक इनका है, अगर इनके हुकूक आप पूरे करेंगे इसके बाद दूसरी जगहों पर जाकर खर्च करना चाहिए। तो कुरान मजीद ने तो नाम लेके कहा है फलिल वालदैन वल अक्रबीन, यानी सबसे पहले ये वालदैन है जो इसके हकदार है, फिर अकरबा, और जाहिर है कि सारे ही अकरबा का जिक्र कर दिया, यानी उसमें सबसे बढ़कर कौन होते हैं? आपके बहन भाई।
अच्छा ये जावेद साहब आपने अभी वालिदैन का जो कहा इसमें एक वजाहत और कर दीजिएगा, बहन भाइयों के मामले में तो बहुत सारे और भी स्कॉलर्स का ख्याल है कि आप दे सकते हैं, लेकिन वालिदैन के बारे में हमारे फुकहा एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि ज़कात अपने असल को और अपने फुरू को नहीं दी जा सकती। यानी ऊपर अगर आप जाएँ तो वालिद वालदा दादा दादी नाना नानी को नहीं दी जा सकती, और नीचे जाएँ अगर आप तो बेटे बेटी पोते पोती नवासे नवासियों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये असल और फुरू हैं। इस पे जरा रोशनी डालिएगा।
इसकी वो दलील होनी चाहिए ना, मैंने तो आपको कुरान मजीद की आयत सुना दी।
दलील मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अगर एक हूँ कमा रहा हूँ मैं, और मैं अपने माल में से अपनी बीवी पे खर्च कर रहा हूँ, अपने बच्चों पर खर्च कर रहा हूँ, तो मेरी बीवी और मेरे बच्चों से ज्यादा कहीं ज्यादा मुस्तहिक मेरे वालिदैन हैं, तो मैं उन पर ज़कात का पैसा क्यों खर्च करूंगा? जो मैं माल कमा रहा हूं अपने बीवी बच्चों को अगर खिला रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने वालिदैन को भी उसी तरह से।
आपका जवाब उनके सवाल के अंदर छुपा हुआ है। देखिए यानी आम हालात में मैं अपनी बीवी के नारो नफके की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ, मैं अपनी औलाद की तालीम की बंदोबस्त कर रहा हूँ, उसकी जरूरियात पूरी कर रहा हूँ। आम हालात में जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, वालिदैन मेरे घर में है, उनको खाना दे रहा हूँ, उनकी खिदमत कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारियां जब अदा कर रहा हूँ,
ठीक है,
वालिदैन अपनी जगह पर है, बच्चे हैं आपके पल बढ़ गए, अब अपने काम पर चले गए हैं,
पांव पे
आपके बहन भाइयों की भी सूरत हाल है, अब वो आपके मुकाबिल में एक पूरी शख्सियत रखते हैं,
ठीक,
उनकी कोई जरूरत सामने आ गई और आपके पास ज़कात का या कोई इन्फाकी का पैसा है जो आप देना चाहते हैं, क्यों नहीं देंगे उनको? तो असल में इन दोनों चीजों में फर्क करना चाहिए। जिस वक्त एक जिम्मेदारी आपकी है उस जिम्मेदारी को आप अदा कर रहे हैं तो वो तो ठीक है कि बीवी है आपकी तो नाना नफका आपको पूरा करना है, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि बेगम ही एक दिन आपसे ये कहती हैं आगे कि मुझे अपने वालदैन के लिए कुछ पैसे चाहिए और उनकी कोई जरूरत है और ये भी महसूस करती हैं कि वो जरूरत पूरी करनी चाहिए, तो उनकी खिदमत करना तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो अब आप बीवी को देंगे या नहीं देंगे? तो असल में आप अपनी जिम्मेदारियों के अंदर अगर ज़कात इस्तेमाल करें, इसको एक और तरह से समझ लें। देखिए एक मेरा मुलाजिम है, मैंने उसको किसी काम के लिए रखा हुआ है, जब मैं उसको काम के लिए रखता हूँ तनख्वाह मुकर्रर करूंगा,
ठीक,
अब मैं तनख्वाह तो ज़कात में मिन्हा नहीं कर सकता,
ठीक है, बिल्कुल सही,
क्योंकि वो मेरे और उसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो काम कर रहा है, मैं उसको उसका मुआवजा दे रहा हूँ,
सही है,
इसके आगे अगर कोई जरूरत अपनी पेश करेगा तो नहीं दे सकता,
तो मुलाजिम है ना, वो मुलाजिम है, मैं उसे तो दे सकता हूँ।
देखिए वो आप जो पहले मरहले में नहीं दे सकते थे क्या वजह थी? वहां आपकी जिम्मेदारी थी, तो जहां आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये काम अंजाम दें वहां आपको नहीं देनी चाहिए। आप अपने बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, आप उसको खाना खिला रहे हैं, आप उसकी तालीम दे रहे हैं, वो आपके ऊपर मुनहसर है, तो आपको नहीं खर्च करना चाहिए। वालदैन आपके घर में मौजूद है, खाना खा रहे हैं, आप उनकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, नहीं देनी चाहिए। वालदैन अपनी किसी जरूरत के लिए आपसे बात करते हैं जिसकी कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आयद होती और आपके पास ज़कात के सिवा कोई और चीज मौजूद नहीं है, जरूर दें उनको। इसी को बयान किया कुरान मजीद ने फलिल वालिदैन वल अक्रबीन, यानी उनको आपने महरूम कर दिया मुस्तकिल तौर के ऊपर, आपके पास जायद मौजूद नहीं है, वही ज़कात के चंद रुपए हैं, तो वालदैन तो अपनी जरूरत के लिए किसी और के आगे हाथ फैलाएं जाकर आप बहरहाल किसी और को देंगे।
अच्छा
तो वो चीजें जो आपकी जिम्मेदारी में आ गई हैं وہ مستثنا ہونی چاہیے. وہاں پر عقل کہتی ہے, علم کہتا ہے کہ آپ کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے ایک ملازم کو رکھا ہوا ہے, غریب آدمی ہے, لیکن وہ ملازمت میں جو آپ کا کام کر رہا ہے اس کے معاوضے میں زکات آپ کو نہیں دینی چاہیے. آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہیں, ان کو پڑھانا لکھانا آپ کی ذمہ داری ہے, وہاں آپ کو نہیں خرچ کرنا چاہیے. یہ اسی طرح والدین آپ کے ہاں ہیں, آپ ان کی ذمہ داری ہے, اخراجات پورے کر رہے ہیں, یا آپ نے کوئی اور ذمہ داری ان کی لی ہوئی ہے جو آپ کو پوری کرنی چاہیے, وہاں خرچ نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک,
اس سے زائد ان کی ضروریات ہیں, ان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مستحق ہیں, ان کو ملنا چاہیے, تو آپ زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. اللہ توفیق دے آپ کے پاس زائد ضرور تھے, لیکن یہ کہ یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ جتنا انفاق کرنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے, تو سوال پیدا ہوا ہے نا یہ انفاق کن کے لیے ہے؟ فرمایا وللوالدین والاقربین, سب سے بڑھ کر والدین کے لیے اور اس کے بعد اقربا کے لیے.
زکوٰۃ جو ہے جب آپ نکالتے ہیں اپنے مال میں سے, تو آپ کا جو اولین حقدار ہے اس زکوٰۃ کا وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہے. لیکن اگر ریاست زکوٰۃ ہم سے لے رہی ہے تو پھر وہ قریبی رشتہ دار تو ہم نہیں دیں گے, پھر تو ریاست کو دے دیں گے, اور ریاست پھر جہاں چاہے گی خرچ کرے گی. تو یہ دو باتیں بظاہر متضاد نظر آ رہی ہیں, میں ریاست کو دوں یا میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوں.
یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. دیکھیے جب نظم ریاست قائم ہو گیا ہے, یعنی مسلمانوں کی ایک اجتماعیت وجود میں آ گئی ہے, انہوں نے اپنا ایک اجتماعی نظم قائم کر لیا ہے, تو پھر ترجیحات اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے,
پھر اس کو فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس اس کے بعد انفاق کا حق رہتا ہے.
اچھا,
وہ ہم کریں گے اور اس میں وہی طریقہ اختیار کریں گے. جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, یعنی اب معاملے کی نوعیت تبدیل ہو گئی.
ٹھیک ہے,
تبدیل ہو گئی تو اب پورے معاشرے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. ہم معاشرے کی سطح پر کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتے. ہر شخص کے معاملات کو ریاست یا معاشرے کی سطح پر ترجیحات کا موضوع نہیں بنا سکتے. تو ہمارے لیے سادہ اصول وہی ہوگا کہ جو زیادہ قریب ہے اس کو ہم دیں گے, اور جو دور ہے اس کی ذمہ داری ہم پر اسی لحاظ سے کم ہو جائے گی, یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جائے گی.